میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کے پاس کھڑا ہو کر جو شخص اس آیت مبارکہ کو پڑھے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والوں ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ یعنی آیت مبارکہ پڑھ کر اس کے بعد صلی اللہ علیہ یا محمد، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک آپ پر رحمت نازل فرمائے، 70 مرتبہ پڑھے یہ، تو فرشتہ ندا کرتا ہے کہ اے فلاں، اللہ پاک تجھ پر بھی رحمت نازل فرمائے، تیری ضرورت پوری ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا میں ضمناً ایک بات ضرور عرض کروں گا، الحمدللہ دنیا بھر سے عاشقان رسول کے قافلے سوئے مکہ سوئے مدینہ عمرہ کے لیے جاتے ہی ہیں، اور انشاءاللہ پھر حج کے لیے بھی قافلے جاتے ہیں، تو مجلس حج و عمرہ دعوت اسلامی کا ایک اہم شعبہ ہے، اس کے تحت عمرہ پر جانے والوں کو عمرے کی تربیت دی جاتی ہے، حج پر جانے والوں کو حج کی تربیت دی جاتی ہے۔ اللہ توفیق دے جب کبھی مکہ مدینہ کی حاضری کا قصد ہو تو عمرہ تربیتی اجتماع یہ ضرور منعقد کرے، اگر آپ کا کوئی گروپ جا رہا ہے مبلغ دعوت اسلامی کو بلا لیں۔ اچھا، آپ کہیں گے مبلغ دعوت اسلامی نہیں ہے، تو الحمدللہ مدنی چینل کے کئی سلسلے اس کی تربیت کے موجود ہیں، یوٹیوب چینل پہ بھی موجود ہیں، اور پھر باقاعدہ مجلس نے آئی ٹی نے اس کی اپلیکیشن بنائی ہے کہ آپ کو مکے جانا ہے تو کون کون سے مرحلے پر کیا کیا کرنا ہے، مدینے جانا ہے تو کیا انداز اختیار کرنا ہے، تو انشاءاللہ الکریم اگر وہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو قدم بہ قدم آپ کی انشاءاللہ رہنمائی ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ گزشتہ اجتماعات میں ہم نے سورہ فاتحہ کی وضاحت اور اس سے ملنے والے مدنی پھول سننے کی سعادت حاصل کی تھی، اور انشاءاللہ الکریم سورہ بقرہ کی آج ابتدا ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں خوب ذوق و شوق کے ساتھ مکمل بیان سننے سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی سب سے پہلی سورت ہے، اور اس میں 40 رکوع اور 286 آیات ہیں۔ سورہ بقرہ یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی، بہت بابرکت اور فضیلت والی سورت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام علیم رضوان میں سے جو کوئی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سیکھ لیتا تو ہمارے درمیان اس کو بہت بلند رتبہ سمجھا جاتا تھا، اور یہ بڑی سعادت ہوتی ہے جب کبھی بیان سنیں، مطالعہ کریں، سٹڈی کریں، اور اس میں کوئی ایسی بات سمجھنے کا موقع ملے जैसे एक इस्लाम भाई के मुतालिक मुझे पता है कि उन्होंने, बल्कि एक बुजुर्ग का भी वाकया है अमीर अहले सुन्नत ने लिखा है कि वो मस्जिद में बैठे कुरान पढ़ाया करते थे। तो उनसे पूछा गया कि हजरत आप पढ़ाते ही रहते हैं, तो कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़े दूसरों को पढ़ाए। तो इस हदीस ने मुझे मस्जिद में बिठा के रखा हुआ है। अब हम में से कितने कि जिनको कुरान पढ़ना आता है, चलो चंद एक को पढ़ना आता है, नहीं आता, तो दोनों के लिए फजीलत है ना, पढ़ने वाले के लिए भी फजीलत है, पढ़ाने वाले के लिए भी फजीलत है। तो जिन्हें पढ़ना आता हो वो पढ़ाएं, जो नहीं पढ़ सकते वो पढ़ लें। फिर ये सुना कि सब में उसको बुलंद रुतबा समझा जाता, कौन सूरह बकरा और सूरह आले इमरान समझने वाले, तो क्या हम में को ऐसा शौक कि हम भी ये सीखें? कैसे सीखें? अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मदरसतुल मदीना बालिगान और जो तफासीर सीखने का जो जरिया है बेहतरीन फैजान ऑनलाइन एकेडमी, इसमें आप दाखला ले लें। हदीसे पाक में सूरह बकरा और सूरह आले इमरान को दो चमकदार सूरतें कहा गया है। अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो चमकदार सूरतों सूरह बकरा और सूरह आले इमरान की तिलावत किया करो, क्योंकि रोजे कयामत ये दोनों सूरतें अपने पढ़ने वाले की शफात करेंगी। और एक और मकाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह बकरा की तिलावत किया करो, क्योंकि सूरह बकरा को लाजिम पकड़ लेना बरकत है, इसको छोड़ देना हसरत है, और जादूगर इसका मुकाबला करने की ताकत नहीं रखते। एक मरतबा हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु तशरीफ फरमा थे, लोगों को दीन सिखा रहे थे। आपने एक वाकया सुनाते हुए फरमाया कि एक साहबी रसूल रजी अल्लाह अन्हु कहीं जा रहे थे, रास्ते में उन्हें शैतान मिल गया। उन साहबी रसूल रजी अल्लाह अन्हु ने शैतान को पकड़ लिया, दोनों के दरमियान कुश्ती हुई। साबिय रसूल रदी अल्लाह अन्हु ने शैतान को नीचे गिरा दिया। शैतान कहने लगा मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपको एक बात बताता हूं। साबिय रसूल रदी अल्लाह तआला ने शैतान को छोड़ दिया। वह शैतान अपनी जबान से फिर गया, उसने बात ना बताई। साबिय रसूल रदी अल्लाह अन्हु ने दोबारा शैतान को पकड़ा, फिर उसको गिराया। अब की बार फिर शैतान बोला मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपको एक अजीब बात बताऊंगा। साबिय रसूल रदी अल्लाह अन्हु ने फिर छोड़ दिया। शैतान ने फिर कहा मैं नहीं बताऊंगा। उन साबिय रसूल रदी अल्लाह ताला उन्होंने तीसरी मरतबा फिर शैतान को पकड़ा, नीचे गिराया, और अब की बार उसके सीने पर बैठकर उसके गले पर अंगूठा रखकर कहा बताओ तो छोड़ूंगा वरना नहीं छोड़ूंगा। अब शैतान ने बात बताई, बोला किसी जगह काफी सारे शैतान जमा हों, उनके दरमियान अगर सूरह बकरा की एक आयत पढ़ दी जाए तो वो सारे शैतान भाग जाएंगे, और जिस घर में सूरह बकरा की एक आयत पढ़ी जाए उस घर में शैतान दाखिल नहीं हो सकता। ये वाकया सुनकर लोगों ने हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रदी अल्लाह उनसे पूछा कि वो सहाबी कौन थे, हैं? वो सहाबी कौन थे और कौन हो सकता है? वो मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला। गली से उनकी शैतान दुम दबा कर भाग जाता है, गली से उनकी शैतान दुम दबा कर भाग जाता है, है ऐसा रोब ऐसा दबदबा फारूक आजम का। तो हर सहाबिये नबी जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती। तो मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मालूम हुआ कि सूरह बकरा की बरकत से शैतान से, जादू टोने वगैरह से हिफाजत होती है। अब चाहते हैं ना, बहुत बहुत मदनी चैनल के नाजरीन भी होंगे, दुनिया जहां के फेरे लगा दिए, इससे पूछा उससे पूछा, भाई घर में कुरान पढ़ें तो सही ना, आए तो सही ना, बरकत पानी है देखें तो सही, ये करके देखें तो सही कि कैसी बरकतें मिलती है। तो हमें चाहिए कि हम अपने घरों में सूरह बकरा की तिलावत किया करें। एक साहबी रसूल है हजरत साबित बिन कैस रदी अल्लाह अन्हु, रात के वक्त उनका घर ऐसा चमकता था जैसे चराग रोशन हो, लोगों ने आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इस बात का तस्करा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साबित बिन कैस जरूर रात को सूरह बकरा की तिलावत किया करते होंगे। चुनाचे साबित बिन कैस रजी अल्लाह अन्हु से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हाँ वाकई मैं रात को सूरह बकरा की तिलावत करता हूँ। क्या घराने है? कैसे घराने हैं ये? इन घरों में कुरान पढ़ा जाता है, इन घरों में अल्लाह का जिक्र होता है। तो प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, सूरह बकरा पढ़ने की कैसी बरकतें हैं। अमी नियत करें कि कुछ ना कुछ पढ़ लिया करें, कुछ ना कुछ पढ़ लिया करें तो इंशाअल्लाह करीम इसकी खूब बरकतें हासिल होंगी। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। तो सूरह बकरा की पहली और दूसरी आयत से मुतालिक आज हम कुछ मदनी फूल सुनने की सआदत हासिल करेंगे। अल्लाह पाक हमें नूरे कुरान से हिस्सा नसीब फरमाए। अल्लाह पाक ने सूरह बकरा की आयत नंबर 1 और 2 में इरशाद फरमाया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। आसान तर्जमा कुरान, अलिफ लाम मीम वो बुलंद रुतबा किताब जिसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं। ये जो अलिफ लाम मीम ये हुरूफ मुकत्तआत में से है और कुरान करीम की मुख्तलिफ सूरतों के शुरू में इस तरह के हुरूफ आते हैं, जैसे अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम सौद, अलिफ लाम रौ वगैरह, इनको हुरूफ मुकत्तआत कहते हैं। हुरूफ मुकत्तआत के मुतालिक दुरुस्त और पुख्ता बात क्या है? दुरुस्त और पुख्ता बात यह है कि अल्लाहु व रसूलुहु आलम, यानी इन हुरूफ मुकत्तआत का मतलब और माना अल्लाह पाक बेहतर जानता है या अल्लाह पाक की अता से उसके महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। तो मुसलमानों के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हर किताब का एक राज होता है और कुरान करीम में अल्लाह पाक का राज सूरतों के शुरू में आने वाले हुरूफ मुकत्तआत हैं। एक मरतबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह बकरा की तिलावत फरमा रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत फरमाई है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु। हुयई बिन अख्तब ये यहूदी था, उसे जब मालूम हुआ तो जल्दी से बारगाह रिसालत में पहुंचा और पूछा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो आपने पढ़ा है क्या ये अल्लाह पाक का कलाम है? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ ये अल्लाह पाक का कलाम है। तो हुयई बिन अख्तब इल्मुल आदाद यानी अदद का जो इल्म होता है उसका माहिर था, चुनाचे इसने गिनती शुरू की कि अलिफ का 1 अदद है, लाम के 30, मीम के 40, तो 1+40+30 यानी 1+40+30 ये 71 हुए। तो यूं हिसाब लगाकर बोला कि इसका मतलब ये बना कि आपकी उम्मत 71 साल दुनिया में रहेगी, लिहाजा जो दीन 71 साल दुनिया में रहना है तो इसमें दीन में मैं क्यों दाखिल हो जाऊं। तो हुयई बिन अख्तब के बेपर की ये बात सुनकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे मकाम से हुरूफ मुकत्तआत पढ़े, फरमाया अलिफ लाम मीम सौद। तो हुयई बिन अख्तब ने दोबारा गिनती शुरू की कि अलिफ का 1 अदद, लाम के 30, मीम के 40 और सौद के 90, तो ये सारे अदद मिलकर 161 हुए। इसका मतलब है कि आपका दीन दुनिया में 161 साल रहेगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और मकाम से हुरूफ मुकत्तआत पढ़े, अलिफ लाम रौ। तो हुयई बिन अख्तब बोला ये तो पहले से ज्यादा हो गए, अलिफ का 1 अदद, लाम के 30 और रा के 200, ये कुल मिलाकर 231 हुए, आपका दीन 231 साल रहेगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और मकाम से पढ़ा, अलिफ लाम मीम रौ। तो हुयई बिन अख्तब ने फिर गिनती शुरू की, अलिफ का 1, लाम के 30, मीम के 40, रा के 200, तो यूं 271 हो गए। तो यूं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ हरूफ मुकत्तात पढ़ते गए और वो गिनती करता गया। आखिर उसने झुंझलाकर कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने दीजिए, मैं इस राज को नहीं समझ सकता। तो सुभान अल्लाह, क्या शान है कुरान करीम की भी और साहिब कुरान की भी। आला हज़रत ने कहा ना, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जबा नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तो बहरहाल हरूफ मुकत्तात इनके माना क्या है ये अल्लाह पाक बेहतर जानता है या अल्लाह पाक के रसूल जानते हैं। बाज मुफस्सरीन ने, उलमा ने कुरान और हदीस की रोशनी में इन हरूफ मुकत्तात की जायज तावीलात की हैं। इनमें से एक तावील ये है कि हरूफ मुकत्तात असल में कस्में हैं, यानी अलिफ से कोई चीज बनती है, अल्लाह पाक ने उसकी कसम इरशाद फरमाई। यूं ही लाम और मीम से भी कोई चीज बनती है, अल्लाह पाक ने उनकी कसम इरशाद फरमाई। यूं ये तीन कसमें इरशाद फरमाकर अल्लाह पाक ने फरमाया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, वो बुलंद रुतवा किताब जिसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं। अब वो चीजें क्या हैं, अलिफ लाम और मीम से क्या बनता है? मुफस्सिरीन किराम के मुख्तलिफ अक़वाल हैं। आशिक़े माहे रिसालत आला हजरत रहमतुल्लाह ताला ने इस बारे में बड़ी ईमान अफरोज बात लिखी। आप फरमाते हैं कि अलिफ से मुराद प्यारे आका की हालत क़याम, लाम से मुराद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत रुकू, और मीम से मुराद मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत सजदा। तो यूं मतलब बनेगा कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके क़याम, आपके रुकू और आपके सजदे की कसम कुरान ला रैब किताब है। तो सैयद आला हज़रत मजीद फरमाते कि इसकी एक और तावील भी हो सकती है, वो ये कि अलिफ से मुराद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद मुबारक, लाम से मुराद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ मुबारक, मीम से मुराद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दहन मुबारक। तो मतलब बनेगा ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके कद मुबारक, जुल्फे अंबरी, खुशबूदार दहन मुबारक की कसम कुरान ला रैब किताब है। वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला, कि कलाम मजीद ने खाई शहा, तेरे शहरों कलामो बका की कसम। तो मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह पाक फरमाता है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, वो बुलंद रुतबा किताब जिसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं। तो अंबिया किराम अलीम रिदवान को दो चीजें खसूसियत के साथ अता की जाती हैं, वही और मोजज़ा। ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। वही आती है मखलूक की हिदायत के लिए, ये गोया एक दावा होता है, यानी नबी अलैहिस्सलाम लोगों को अल्लाह पाक का कलाम सुनाकर गोया ये दावा करते हैं कि मैं अल्लाह का नबी हूं और ये कलाम अल्लाह पाक ने मुझ पर नाजिल फरमाया है। इस दावे की दलील के लिए अंबिया को मोजज़े अता किए जाते हैं। यानी लोग जब दलील मांगते हैं कि हम कैसे मान लें कि आप अल्लाह के नबी हैं, तो अंबिया किराम अलैहिस्सलाम इन्हें मोजज़ात दिखाते हैं। जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में तशरीफ लाए, ऐलान नबूवत फरमाया, तो फिरौन ने इस पर दलील मांगी, तो आपने अपना असा मुबारक जो लकड़ी का था जमीन पर डाला, वो फौरन सांप बन गया। ये मोजज़ा था। इसी तरह दीगर अंबिया किराम को भी ये खसूसी चीजें वही और मोजज़ात अता किए जाते हैं। लेकिन कुर्बान जाइए, अल्लाह पाक ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निराली शान अता फरमाई। अल्लाह पाक ने सरकार आली वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार मोजज़ात अता तो किए ही, साथ साथ आप पर जो वही नाजिल फरमाई, जो कुरान उतारा, उसे भी आपको मोजज़ा बना दिया गया। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस शान से वही नाजिल फरमाई कि अगर बिलफर्ज कुरान के साथ अलग से कोई मोजज़ा ना भी दिया जाता, फिर भी कुरान खुद इस बात की दलील है कि ये किसी बंदे का नहीं बल्कि अल्लाह का कलाम है। कुफार ने सच्चे नबी, अच्छे नबी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज किया था। तर्जमा कंजुल इरफान, जिसको कुरान में फरमाया बताया गया, बल कालू अदगासु अहलामिम बल इफ्तराहु बल हुआ शायर, बल्कि काफिरों ने कहा झूठे ख्वाब हैं, बल्कि खुद इस नबी ने अपनी तरफ से बना लिया है, बल्कि ये शायर हैं। ये कुफार ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर माजल्ला इतराज किया कि जिस कलाम को आप वही कहते हैं ये अल्लाह का कलाम नहीं है। इस पर ये साबित करने के लिए कि ये वाकई अल्लाह पाक का कलाम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई अल्लाह पाक के सच्चे नबी हैं, किसी अलग दलील की जरूरत नहीं थी। अल्लाह पाक ने फरमाया वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्ली वदऊ शुहदाकुम मिन दूनिल्लाह, और अगर तुम्हें इस किताब के बारे में कोई शक हो जो हमने अपने खास बंदे पर नाजिल की है तो तुम इस जैसी एक सूरत बना लो और अल्लाह के अलावा अपने सारे मददगारों को बुला लो। यानी कुफारे मक्का, अगर तुम्हें शक है कि जो कलाम मजीद हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत करते हैं ये अल्लाह का कलाम नहीं है, तो फिर ऐसा कलाम तुम भी बना के दिखा दो। तुम कहते हो ये कहानियां हैं तो ऐसी कहानियां तुम भी बना लाओ, अगर ये शायरी है तो तुम मैदान शायरी में बड़े माहिर हो, शायरी करके दिखा दो। फिर भी ये जरूरी नहीं कि तुम में से कोई ही शख्स ऐसा करे, नहीं, तुम सब अहले अरब मिल जाओ, दुनिया भर के शायरों को इकट्ठा कर लो, सब मिलकर ऐसा कलाम बनाकर दिखा दो। अगर ना बना सको, यकीनन तुम नहीं बना सकोगे, तो मान लो कि कुरान मजीद ये अल्लाह का कलाम है, किसी इंसान का नहीं। और हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्लाह के सच्चे नबी हैं। तो मालूम हुआ कि दीगर अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को वही अलग अता होती थी, मोजज़ा अलग दिया जाता था, लेकिन महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निराली शान है। अल्लाह पाक ने आपको सरापा मोजज़ा बनाया, साथ ही वही भी वो अता फरमाए जो सिर्फ वही नहीं बल्कि मोजज़ा भी है, और ये कुरान दाइमी मोजज़ा है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जाहिरी पर्दा फरमा चुके, लेकिन मोजज़ाए वही कुरान अब भी मौजूद है। क़यामत तक आने वाला कोई फर्द भी कुरान करीम उठाए, सच्चे दिल से तासुब की ऐनक उतार कर पढ़े, समझे, इंशाअल्लाह उल करीम पुकार उठेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के सच्चे नबी हैं। आज साइंस का दौर है ना, और कुछ अरसे पहले अल्ट्रासाउंड जो मशीन है ईजाद नहीं हुई थी, साइंस अभी तहकीकात ही कर रहे थे कि मां के पेट में बच्चा कैसे बनता है, नुतफा यकदम इंसानी शक्ल कैसे इख्तियार कर लेता है, मुख्तलिफ मराहिल से गुजरने के बाद इंसानी शक्ल इख्तियार कैसे करता है। तो अमेरिका का एक डॉक्टर था मार्शल जॉनसन, वो भी तहकीकाती टीम में शामिल था। एक मरतबा उसकी एक मुसलमान से मुलाकात हुई, मुलाकात के दौरान मुसलमान ने कुरान करीम की आयत डॉक्टर को सुनाई कि अल्लाह पाक फरमाता है वक़द खलक़कुम अतवारा, सूरह नूह की आयत नंबर 14 में है ये तर्जमा कंजुल इरफान, हालांकि उसने तुम्हें कई हालतों से गुजार कर बनाया। तो डॉक्टर जॉनसन कुर्सी पर बैठा हुआ था, जब उसने ये आयत सुनी तो हैरानी में एकदम खड़ा हो गया और ताज्जुब से बोला ये नामुमकिन है, कुरान में ऐसी आयत नहीं हो सकती। मुसलमान ने उसे आयत दिखाई और साथ ही दीगर आयात जो इंसानी तखलीक के मौजू पर हैं वो भी दिखाई। ये देखकर डॉक्टर बोला दो सूरतें हो सकती हैं, या तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्ट्रासाउंड मशीनें थी, उन्होंने अल्ट्रासाउंड के जरिए देखकर ये कलाम बना लिया, मगर ये हो नहीं सकता कि 1400 साल पहले अल्ट्रासाउंड मशीन का तस्वीर ही नहीं था, लिहाजा फिर दूसरी सूरत यही कि ये किसी इंसान का नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के सच्चे रसूल हैं। सुभान अल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तो प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, सूरह बकरा के हवाले से हम सुन रहे हैं, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, वो बुलंद रुतबा किताब जिसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं। उलमा ने इसकी मुख्तलिफ वजूहात और मुख्तलिफ इसके जाविये भी बयान किए हैं। एक ये कि कुरान करीम के लारैब होने की एक वजह यह कि इंतहाई जामे कलाम है। इसके एक एक लफ्ज में इल्म के ऐसे समंदर रख दिए गए हैं कि इंसानी अक्ल हैरान रह जाती है। सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद, ये सूरत है ना, इसकी कुल चार आयतें हैं, इसमें से 15 अल्फाज हैं और सिर्फ 47 हरूफ हैं। इन 15 अल्फाजों में पूरा इल्मे तौहीद बयान किया गया है। उलमा किराम ने सूरह इखलास की तफसीर में सैकड़ों सफहात पर मुश्तमिल किताबें लिखी हैं। ऐसे ही सूरह कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर, इसकी सिर्फ 3 आयतें हैं, 10 अल्फाज हैं। इन 10 अल्फाज में ऐसे कमाल अंदाज में शाने मुस्तफा बयान की गई और ऐसे ऐसे इल्म के मोती इसमें रख दिए गए कि वाह सुभान अल्लाह। सूरह कौसर की तफसीर में भी उलमाए किराम ने पूरी पूरी जिल्दे किताबें लिखी हुई है। भाई सूरह फातिहा सुभान अल्लाह, इसकी भी बड़ी शान है, इसके कुल 27 अल्फाज हैं। इन 27 अल्फाजों में कमोबेश 104 आसमानी किताबों का खुलासा बयान किया गया है। तो ऐसा जामे कलाम चंद लफ्जों में इतने मानी रखना, इल्म के ऐसे समुंदर समो देना, किसी इंसान के बस की बात नहीं। यकीनन ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ही का कलाम है। एक मरतबा मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह अन्हु ये मस्जिद नबी शरीफ में आराम फरमा रहे थे, अचानक आपने सुना कोई बुलंद आवाज से कलमे शहादत पढ़ रहा था। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह अन्हु ने आंखें खोली, देखा एक गैर मुस्लिम है, आपने उससे कलमे शहादत पढ़ने की वजह पूछी तो उसने कहा मैंने तौरात जबूर और इंजील पढ़ी हुई है, अभी मैंने एक शख्स को कुरान की तिलावत करते हुए सुना, वो ये आयत पढ़ रहा था सूरह नूर की आयत नंबर 52, और जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे और अल्लाह से डरे और उसकी नाफरमानी से डरे तो यही लोग कामयाब हैं। उस न्यू मुस्लिम ने कहा कि तौरात जबूर और इंजील में जो तालीमात हैं उन सब का खुलासा इस एक आयत में बयान कर दिया गया, लिहाजा जब मैंने यह आयत सुनी तो जान लिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल और कुरान करीम वाकई अल्लाह पाक का कलाम है। तो मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, कुरान करीम के लारैब किताब होने की एक वजह यह भी उलमा बयान करते हैं कि कुरान करीम का हर लफ्ज, हर लफ्ज 100% सच्चा है। कुरान करीम में बेशुमार बहुत सारी पेशन गोइयां आइंदा की बातें की गई हैं और कुरान करीम में जितनी पेशन गोइयां हुई सब की सब मिनो अन यानी 100% हू बहू सच साबित हुई हैं। एक मिसाल मैं आपको सुनाता हूं, तब्दीली किबला का वाकया बड़ा मशहूर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का पाक में तशरीफ फरमा थे तो नमाज में काबा की तरफ रुख फरमाते थे, फिर जब हिजरत करके मदीने मुनव्वरा तशरीफ लाए तो आपने मस्जिद अक्सा को किबला बनाया। तो 17 माह के बाद ये किबला तब्दील हुआ और अल्लाह पाक ने दोबारा काबा शरीफ को किबला बनाने का हुक्म दिया। इस तब्दीली किबला पर उस वक्त के काफिरों ने बहुत सारे एतराज किए, उनके जवाब दिए गए। एक अनोखी और निराली बात जो थी वो ये कि किबला तब्दील होने के बाद अभी काफिरों ने एतराजात नहीं किए थे, एतराजात नहीं किए थे, इससे पहले ही अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया सूरह बकरा की आयत नंबर 142 में, सयकूलु सुफहाउ मिनन्नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिमुल्लती कानू अलैहा, तर्जमा कंजुल इरफान, अब बेवकूफ लोग कहेंगे इन मुसलमानों को इनके उस किबले से किसने फेर दिया जिस पर ये पहले थे। ये तर्जुमा है इसका। अभी उन्होंने इतराज दर्ज नहीं किए थे, अन करीब करेंगे। अब जरा गौर फरमाइए कि काफिर इस्लाम को मिटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते थे, पैसा खर्च करते थे, साजिशें रचाते थे। बड़ी आसान बात थी, जबान उनके मुंह में थी, वो अपनी जबानों पर ताला लगा कर रखते, एतराज ना करते। अगर वो एतराज ना करते तो कुरान की आयत झूठी साबित हो जाती कि देखो कुरान कहता है कि हम एतराज करेंगे, हमने तो किया ही नहीं। जब एक आयत झूठी हो जाती तो पूरे कुरान से एतबाद उठ जाता। मगर कुर्बान जाइए कि कुरान ये अल्लाह का कलाम है, इसका हर हर लफ्ज सच्चा है। जो कुरान ने कह दिया वो होकर रहा। अल्लाह पाक ने फरमा दिया कि वो एतराज करेंगे, तो उन्होंने वाकई एतराज किया और रब्बे करीम ने उनके एतराजात के जवाबात भी इरशाद फरमा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक पीएचडी स्कॉलर था, उसने मैथ्स में इल्म रियाजी में पीएचडी कर रखी थी। गैर मुस्लिमों का उमूमन बचपन ही से मनफी जहन बना दिया जाता था, अभी भी बना दिया जाता है। उन्हें समझा दिया जाता है कि कुरान अच्छी किताब नहीं, इसे सारी जिंदगी ना कुरान पढ़ते ना समझते कि उन पर हक वाजे होता। खैर, ये पीएचडी स्कॉलर जो था उसने एक दिन सोचा कि मैं कुरान पढ़कर इससे कुछ सीखना तो नहीं है, चलो इसमें से कुछ गलतियां निकालता हूं। अस्तगफिरुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान में ना तो कोई गलती है ना निकाल सकता है ना इसमें से निकली कोई। बहरहाल उसने गलतियां निकालने की नीयत से कुरान करीम पढ़ना शुरू किया। गलती तो क्या निकालनी थी, पाकीजा कलाम की बरकत से वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। अहले मंतिक सरबा सजदा रह गए, अहले मंतिक सरबा सजदा रह गए, पढ़ लिया जब फलसफा कुरान का हम। तो उसने कुरान करीम पढ़कर कलमा क्यों पढ़ा, वो कौन सी ऐसी खास बात थी जिससे वो मुतासिर हुआ, इस ताल्लुक से उसने खुद एक मजमून लिखा। उस मजमून में लिखता है कि जब मैंने सूरह लहब पढ़ी तो मैं समझ गया कि कुरान पाक ये अल्लाह का कलाम है, कि अल्लाह पाक ने फरमाया सयसला नारन जात लहब, अब वो शोलों वाली आग में दाखिल होगा। यानी इस सूरत मुबारका में साफ साफ लफ्जों में फरमा दिया गया कि अबू लहब जहन्नमी है। पीएचडी स्कॉलर लिखता है, गौर फरमाइए, अबू लहब वो शख्स है जो हर मामले में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत किया करता था। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेकी की दावत के लिए जाते, अबू लहब पीछे जाता, आप लोगों को कलमा पढ़ने की तरगीब देते, अबू लहब पीछे से आवाजें कसता, कहता था लोगों इनकी बात मत सुनना। सूरह लहब नाजिल होने के बाद अबू लहब 10 साल जिंदा रहा। अबू लहब के पास 10 साल थे। कुरान को माजल्ला झूठा साबित कर देना उसकी नोके जबान पर था। ये हर बात में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करता था, मगर इसने यहां मुखालफत नहीं की। कुरान ने कहा था अबू लहब जहन्नमी है, ये सच्चे दिल से कलमा पढ़ता, सहाबा की सब में शामिल होकर कहता कि देखो कुरान मुझे जहन्नमी कहता है, मैं तो जन्नतियों की सफ में हूं, लेकिन यह कुरान है, ये अल्लामुल गुयूब, हर छुपी बात को जानने वाले अल्लाह का कलाम है। अल्लाह करीम के इल्मे अज़ली में था कि अबू लहब ईमान नहीं लाएगा, उसने वाकई ईमान कबूल नहीं किया। तो मालूम हुआ कि कुरान ला रैब किताब है, इसमें जर्रा बराबर शक की गुंजाइश नहीं। जो कुरान ने फरमा दिया उसमें जर्रा बराबर भी कमी बेशी नहीं होती, जैसा फरमाया वैसा होकर रहता है। इस बात की दलील है कि कुरान करीम ला रैब किताब है, ये वाकई अल्लाह का कलाम है। अल्लाह पाक हमें ला रैब किताब का फैजान नसीब फरमाए, इसे सीखने समझने पढ़ने अमल करने की इस अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए। तो मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, ये प्यारी किताब जिसको देखना इबादत, जिसको छूना इबादत, जिसको पढ़ना इबादत, मुसलमानों के कौन से घराने हैं जिसके घर में ये किताब ना हो। लेकिन आज हम देखें इतनी सारी फजीलतें, इतनी सारी बरकतें सुनने के बावजूद भी इस किताब को पढ़ना हम नहीं पढ़ते, इस किताब को देखना हम नहीं देखते, इस किताब को चूमना हम नहीं चूमते। बल्कि चूंकि आज भी हमारे कई मुल्क शहरों से आशिकान रसूल आए। ये बात पहले भी बता चुका हूँ, मदनी चैनल पर कई दफ़ा ये क्लिप चला है कि एक छोटी सी बच्ची को किसी ने घर में देखा कि वो कुरान खोलकर उसमें कोई चीज़ रख रही है। घर के बड़े ने किसी ने आवाज़ दी, ये क्या कर रही हो, तो उसने जैसे फौरन बंद किया और उसको कपड़ा चढ़ाने लगी। तो उस आने वाले ने पूछा, बेटा ये क्यों खोल के बैठी है, क्या रखा है इसमें आपने, खोलो इसको। अब उसने जब खोला उसको, कपड़ा हटाया निकाला और जैसे ही कुरान खोला तो उसमें कुछ रकम रखी थी। उसने कहा, बेटा अब रकम इसमें रखती है, ये रखने की जगह है। तो उस छोटी सी बच्ची ने कहा कि जी वो घर में यही तो है जिसको कोई खोलता नहीं है, यानी मैं अपनी चीज अगर दराज में रखूं तो छोटा बड़ा भाई ले जाएगा, कोई भी उठाकर मेरी चीज ले जाएगा, तो यही वो चीज है कि जिसको कोई खोलकर देखता नहीं। हमारे लिए कितनी बड़ी इसमें इबरत है, कितनी बड़ी इबरत है कि हम इस किताब को नहीं देखते। दुनिया भर की डिग्रियां पा ली, पता नहीं क्या क्या टैलेंट हासिल कर लिया, लेकिन नहीं किया तो हमने कुरान पढ़ना नहीं सीखा। नहीं वक्त निकालते तो इस कुरान को पढ़ने का वक्त नहीं निकालते, इस कुरान को समझने का वक्त नहीं निकालते। इस यह दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह जिस पर आप आशिकान रसूल एतमाद करते हैं, जी हाँ, मैं मुबारकबाद दूंगा उन खुश नसीबों को जो दावत इस्लामी के मदारिस बनाते हैं, मैं मुबारकबाद दूंगा उन इस्लामी भाई उन खुश नसीब आशिकान रसूल को जो दावत इस्लामी की मसाजिद में दीनी काम को बढ़ाने के लिए इजाजतें देते हैं, उनके साथ ताउन करते हैं, मसाजिद बनाते हैं, मदारिस बनाते हैं, जामियात बनाते हैं। दावत इस्लामी ने से बातें नहीं की हैं, आपको हमें काम करके दिखाया। मुझे याद है 1991 में हमारे किबला सैयद अब्दुल कादिर शाह साहब ये जिम्मेदार थे हमारे, इन्होंने ऐलान किया था कि हम कराची में 20 मदरसे खोलेंगे। मैं भी उस टाइम मौजूद था वहां पर, हमने नारे लगाए थे कि 20 खुल जाएंगे। आज सिर्फ कराची शहर में 700 से ज्यादा मदरसे हैं, आपकी दावत इस्लामी ने 7000 से ज्यादा मदरसे आपके कायम कर चुकी है। फिर जामेतुल मदीना को देखें तो 1300 से ऊपर जामेतुल मदीना कायम हो गए। मसाजिद देखें तो 650-700 मसाजिद सालाना दावत इस्लामी बनाई जा रही है। फिर आपने पढ़ना है, आप आए हमारे पास पढ़ाएंगे, जब आप नहीं आ सकते हम आ जाएंगे आपके पास, आपके घर आ जाते हैं, आपके ऑफिस आ जाते हैं, आपकी दुकान पर आ जाते हैं, आपकी फैक्ट्री पर आ जाते हैं। और कोई अगर यूं कहता है कि जनाब मेरा तो कोई बैठने की भी जगह नहीं, मैं आउटडोर होता हूं, हम आपको नहीं छोड़ेंगे, हम आपको ऑनलाइन पढ़ा देंगे। आप पढ़ने वाले बने, आप अपने बच्चों को पढ़ाने वाले बने। और कुरान समझना है तो तफसीर कुरान भी दी ना आपको, तफसीर सिरातुल जिनान 10 जिल्दों में। आप कहेंगे ना 10 जिल्दें तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, फामुल कुरान लेने, 1 जिल्द में पूरा कुरान हर्फ ब हर्फ तर्जमे को अलग से शाया किया है, फिर इसकी एप्लीकेशंस बना दी गई है। इंशाअल्लाह उल करीम अल्लाह पाक हमारे रुकने शूरा को नजरे बस से बचाए, हाजी अब्दुल हबीब भाई, ये पूरा तफसीर कुरान ये इन्होंने रिकॉर्ड करा दिया है। यानी आप पढ़ने क्या नहीं है तो सिर्फ सुन ले भाई, कान में लगा ले, सुनते रहिए आप। ये सब क्या है, आप सोचे कि अगर आज हम अपनी दावत इस्लामी को जकात, आज अपनी दावत इस्लामी को अपना फितरा, आज अपनी दावत इस्लामी को डोनेशन देते हैं तो ये दावत इस्लामी करती क्या है। हमारी नस्लों पर एहसान किया उसने, हमें हम पर एहसान किया है, हमारी नस्लों पर एहसान किया है कि अगर आज के जो हालात हम देखते हैं कि इन हालात में हम अपनी नस्लों को किन के हाथों में छोड़कर जाए, तो दावत इस्लामी के हाथों में छोड़ के जाए। अल्लाह पाक अमीर अहले सुन्नत को सलामत रखे कि ऐसा बाग सजाया है, ऐसा काम किया है कि हम दुनिया से चले भी जाएंगे इंशाअल्लाह ये रौनक सदा कायम रहेगी। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि काम जाहिर मुस्तकिल करना होता है, मुस्तकिल करना होता है, लिहाजा इसके लिए अतियात करना, इसके लिए अपनी माली मुआवनत पेश करते रहना, इसके लिए आगे बढ़कर। जी हाँ, आप अगर देते हैं तो आपको फोन नहीं करना पड़े कि दावत इस्लामी वाले फिर आपको याद दिलाए कि हुजूर वो कह पिछले साल आपने रमजान में दिया था तो इस बार भी कुछ आप ताउन करें ना। क्यों भाई, आपके सामने काम है, अरबों रुपए के अखराजात हैं, कैसे इसको पूरा करेंगे। तो लिहाजा दिलो जान से इस कुरान और सुन्नत की अजीम तहरीक दावत इस्लामी को परवान चढ़ाए। यकीन माने हम जिस छोटे उम्र में थे, हम तो रमजान का जब मुझे वो मंजर याद आता है कि क्योंकि हम बाजारों में ही थे, 12 13 साल हमारी दुकानें थी तो बाजार में ही थे हम, तो देखते थे कि बड़ी उम्र के अफराद रमजान का रोजा नहीं रखते थे। आखिर आज क्या जज्बा है कि रजब शरीफ के रोजे मैं आपको मिलवाता हूं। जी हां, मैं आपको मिलवाता हूं 12 15 साल के बच्चों को जो रजब के पूरे रोजे रख रहे हैं। ये क्या जज्बा है, ये क्या जज्बा है कि किस तरह से शौक दिला दिया गया, किस तरह से इस काम को आगे बढ़ा दिया गया। बुजुर्गों के अय्याम मनाए जा रहे हैं तो नियाजें की जा रही हैं, रोजे रखे जा रहे हैं। फिर इस कुरान की तालीम को आम करने के लिए आप सोचें सही कैसा एक नेटवर्क बनाया है, और फिर इस शौक को बढ़ाया जाता है कि आप इसमें आगे बढ़ें, शौक आगे बढ़ाएं, अपनी औलाद को हाफिज कुरान बनाएं। और इस औलाद को भी चाहिए, जी हाँ, कोई अजम करे ना, कोई हौसला करे तो सही, फिर कैसे उसकी राहें आसान हो जाती हैं। तो आज सालाना तकरीबन 8,500 हाफिज ये आपकी दावत इस्लामी बना रही है। मैं उन वालिदैन को मुबारकबाद दूंगा, और जितने हाफिज हो चुके मैं उनको भी दावत देता हूं कि अपनी इस दावत इस्लामी को और मजीद मजबूत करने के लिए, तरक्की दिलाने के लिए कोशिशें करें। अल्लाह पाक हमारी इस दावत इस्लामी को नजरे बस से बचाए, और नूरे कुरान फैजाने कुरान से हमें हमारी नस्लों को माला माल फरमाए। आमीन बिजाही खातमिन नबीजीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम।
मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं।